समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में जानेंगे देश दुनिया के समाचार, चलेंगे क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास। खेल के मैदान की हलचल होगी, व्यापार जगत के उतार चढ़ाव पर भी नजर होगी और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जो आज के दिन इस दुनिया में आए और जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। आज परिक्रमा के इस अंक में मैं हूं हिमांशु कांडपाल और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी वीसी प्रमोद। प्रमोद, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार हिमांशु, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम गोल्ड। एंड एज हिमांशु राइटली सेड, वी हैव फॉर यू अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर, ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। बट वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस विद हिमांशु।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती से पहले महास्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत देशभर में लगभग 7 लाख कार्यक्रम आयोजित किए गए।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्स एट महबूबनगर तेलंगाना दिस आफ्टरनून, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 13,000 करोड़ रूपीज इनॉग्रेटेड।
ऑनलाइन गेम्स, सट्टेबाजी, कैसीनो, घुड़दौड़ और लॉटरी पर आज से 28% जीएसटी लागू।
Prime Minister Modi congratulates Dr. Mohammad Muizu on being elected as President of the Maldives.
अमरीका में सरकार और संसद के दोनों सदन सरकारी कामकाज ठप पड़ने की आशंका टालने के लिए धन उपलब्ध कराने पर सहमत, लेकिन यूक्रेन के लिए कोई नई सहायता नहीं।
And in Hangzhou Asian Games, India clinches gold and silver in trap team shooting events. Aditi Ashok bags silver in individual golf. Medal tally reaches to 42. And now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national and the global level. Today we will talk about International Day of Older Persons. I think Himanshu, ye bahut zaruri hai na, because we are all getting older.
Yes.
And I think it's good to have a day in which we celebrate the day is known as International Day of Older Persons.
जी बिल्कुल, और इस डे का थीम क्या है आप बताएंगे?
जी बिल्कुल बताऊंगा। टुडे द थीम द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, एंड द डे हैज इट्स ओरिजिन्स इन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 45/106 अडॉप्टेड इन डिसम्बर 1990। द थीम दिस ईयर, एज यू आर आस्किंग मी, इज फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन्स अक्रॉस जनरेशंस। दिस आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट हिमांशु, बिकॉज कभी कभी हम देखते हैं कि स्पेशली इन इंडिया आई हैव नोटिस्ड इट दैट जो ओल्डर पीपल हैं उनको हम जनरली थोड़ा सा लाइटली लेते हैं। सो आई थिंक दैट इज अ गुड रेजोल्यूशन एंड अ गुड थीम।
और सबसे बड़ी बात है कि जो ओल्डर पर्सन हैं या जो लोग धीरे धीरे वृद्ध हो रहे हैं, जिनकी उम्र बढ़ रही है धीरे धीरे, उनके लिए विशेष देखभाल की जरूरत है।
Absolutely.
और खास केयर की भी उनके लिए जरूरत है।
बिल्कुल।
और कई बार तो ऐसा देखने में भी आया है, खासतौर पर जो मेट्रोपॉलिटन्स हैं, महानगर हैं, उनमें जो वयोवृद्ध हैं उनके बच्चे उनके आसपास नहीं है, क्योंकि रोजगार है या नौकरी है या बिजनेस है, उसके सिलसिले में उन्हें उनके उनसे दूर रहना पड़ता है।
एब्सोल्युटली। इनफैक्ट इन टोक्यो आई नोटिस दैट जितने आप बूढ़े होंगे आपको और रिस्पेक्ट है वहां पे।
इट
डजंट सीम टू बी द केस इन इंडिया, यू नो। सो कमिंग बैक टू दिस थिंग, 75 इयर्स अगो द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्टेड द लैंडमार्क यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, द फर्स्ट डॉक्यूमेंट आर्टिकुलेटिंग द फंडामेंटल ह्यूमन राइट दैट आर मेंट टू बी यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड। इंटरनेशनल डे दिस ईयर हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग दीज राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन्स, एज वेल एज शेयरिंग एंड लर्निंग फ्रॉम इंटरजेनरेशनल मॉडल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल ह्यूमन राइट्स।
जी बिल्कुल। और वैसे तो जो वरिष्ठ जन हैं, वयोवृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान हर दिन हर पल हमारे मन में होना चाहिए, लेकिन उनके प्रति मन में छुपे सम्मान को व्यक्त करने के लिए और बुजुर्गों के प्रति अपने चिंतन की आवश्यकता के लिए औपचारिक तौर पर भी एक दिन निश्चित किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाने की शुरुआत सन 1990 में की गई थी, और बुजुर्गों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार और अन्याय को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 14 दिसंबर 1990 में यह निर्णय लिया गया था।
That's right. International Day of Older Persons is important because it serves as a global platform to recognize and celebrate the valuable contributions of older persons to our societies. It highlights the need to address the unique challenges and issues faced by older persons, such as healthcare, social inclusion and economic security.
और आने वाले दशकों में 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या दोगुनी से अधिक होने की उम्मीद है, जो 2050 में बढ़कर 1.6 बिलियन हो जाएगी. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहां 60 वर्ष से अधिक उम्र के 7.2 करोड़ लोग रहते हैं. 60 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग रहते हैं. यह संख्या 2051 तक 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वृद्ध लोगों की संख्या बढ़कर 3.25 करोड़ होने की उम्मीद है. और बुजुर्गों की संख्या और अनुपात में वृद्धि का स्वास्थ्य देखभाल, आय और सामाजिक सुरक्षा भुगतान की आवश्यकता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा. और उनकी संख्या में वृद्धि से बुजुर्गों के प्रति दुर्व्यवहार को बढ़ावा भी मिल सकता है. यानी कि उनको एक तो सम्मानजनक व्यवहार चाहिए, उनको उनके हेल्थ केयर चाहिए, उनकी एक कहते हैं लगातार एक सुनिश्चित होनी चाहिए, उनकी इनकम आय सुनिश्चित होनी चाहिए और उनका सोशल सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए.
सिक्योरिटी के अलावा सोशल इंक्लूजन भी, कि हम में से कितने लोग हैं जो इतने बिजी हो जाते हैं अपने लाइफ में दैट वी डोंट हैव टाइम टू गो एंड मीट एन ओल्डर पर्सन, लिसन टू हिज स्टोरीज, यू नो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
जी बिल्कुल. और अगर हम ओल्डर पीपल की बात करें, वृद्ध लोग की बात करें, तो दे आर एसेट्स टू अवर सोसाइटी, कि उनके पास उनके स्किल्स हैं, उनके प्रतिभा है, टैलेंट है, उनके पास उनका अनुभव है, उनका दृष्टिकोण है और दे आर वेरी प्रैग्मेटिक, ठीक है ना,
इन देयर अप्रोच.
तो ये हमारे लिए एक एसेट्स की तरह, एक संपत्ति की तरह है. और इसके बाद भी अगर कई बार क्या होता है कि उनको दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है और समाज के एक हाशिए में उनको ढकेल दिया जाता है. और खासतौर पर जब कोविड का ये जो पैंडेमिक हुआ था, उस दौरान वृद्ध लोगों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ा दिया था और जिससे उनको बोलते होते हैं कि पूरी जिसे अप्रोप्रिएट सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ केयर नहीं मिल पाई थी.
It also highlights the importance of creating age-friendly environments and policies that ensure the well-being and dignity of older persons and promote a fairer and more inclusive society for all generations.
जी बिल्कुल. अगर हम वृद्ध महिलाओं की बात करें तो अगली पीढ़ी के बच्चों की देखभाल करती हैं, उसके अलावा अपने परिवार, अपनी कम्युनिटी और अपनी सोसाइटी में कई तरह का योगदान देती हैं. लेकिन लैंगिक भेदभाव, जिसको कहते हैं हम जेंडर इनइक्वालिटी, और लैंगिक पूर्वाग्रहों के कारण गरीबी सहित परस्पर विरोधी समानताओं का उन्हें सामना करना पड़ता है. समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष समाचार हैं.
That's right. On the eve of Gandhi Jayanti, Prime Minister Narendra Modi today led the nation in Swachhata Hi Seva Abhiyan by joining Mega Cleanliness Drive. As part of the Ek Tarikh, Ek Ghanta, Ek Saath initiative, people across the country today participated in the Mega Cleanliness Drive. We have a report.
In the last Mann Ki Baat program, the Prime Minister highlighted the importance of Swachhata Hi Seva Abhiyan, urging people to join hands and take out time for a Mega Cleanliness Drive today. Citizens from all walks of life took part in cleaning activities at public places including market spaces, railway tracks, water bodies, tourist locations and places of worship across the country. Over 6,40,000 sites were adopted for Shramdaan from urban and rural India under this Mega Cleanliness Drive. A large number of resident welfare associations also came forward to volunteer for Shramdaan in nearly 1 lakh residential areas. In the national capital, BJP President JP Nadda, Union Ministers Rajnath Singh, Bhupendra Yadav, Dharmendra Pradhan, Dr. Jitendra Singh, Hardeep Singh Puri, Meenakshi Lekhi, Rajiv Chandrasekhar and other leaders participated in Swachhata Abhiyan. In this unique initiative, Indian Army, Navy and Air Force personnel, Central Bureau of Investigation, Delhi Police and other government bodies also joined hands along with various civic bodies and civilians to clean various sites. With Adarsh Kumar, this is Aishwarya Rai Nigam for Parikrama, Delhi.
एक तारीख एक घंटा एक साथ थीम पर आज देशभर के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया. रेलवे सहित विभिन्न विभागों ने इसमें सक्रिय योगदान दिया. ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रायपुर संवाददाता विकल्प शुक्ला.
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 107 स्थानों पर आज व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया. इसके तहत इलेक्ट्रिक लोको शेड, विभिन्न स्टेशनों, रेलवे कॉलोनी, कोचिंग डिपो सहित अन्य यूनिटों में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रमदान किया. रायपुर रेल मंडल में 22 से अधिक स्थानों पर स्वच्छता ही सेवा अभियान आयोजित किया गया। भारतीय रेलवे अपने व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के साथ स्वच्छ भारत अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। बीते 15 सितंबर से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अधिक हरित और अधिक पर्यावरण अनुकूल रेलवे प्रणाली को बढ़ावा देना है। स्वच्छता पखवाड़े के दौरान रेलवे द्वारा स्वच्छ संवाद, स्वच्छ रेलगाड़ी, स्वच्छ स्टेशन, स्वच्छ परिसर, स्वच्छ आहार, स्वच्छ प्रसाधन आदि गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस वर्ष स्टेशनों पर पटरियों की सफाई, प्रमुख स्टेशनों तक पहुंच और रेलवे परिसर में प्लास्टिक कचरे को खत्म करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
Puducherry and Olgaret municipalities have jointly conducted Pondi Swachh Marathon today at the Puducherry grounds as part of the Ek Tarikh Ek Ghanta Ek Saath. Our correspondent has submitted this report.
Puducherry and Olgaret municipalities have jointly conducted Pondi Swachh Marathon today at Puducherry. As part of Swachhata Hi Seva activities, Shri R. Selvam, speaker, has flagged off the marathon race in the presence of Shri K. Lakshmi Narayan, Minister of Public Works in the Beach Road. Nearly 700 individuals of male, female and transgender participated in this marathon. Participation of 113 transgender is really a testimony for inclusive gender activity. The participants ran through the streets of Boulevard and completed 5 kilometers distance. Shri N. Rangasamy, Chief Minister of Puducherry, has distributed the prizes. Then he also distributed cleaning tools and inaugurated the 1-hour voluntary cleaning works. Shri S. Sivkumar, Commissioner Puducherry Municipality, and Shri A. Suresh Raj, Commissioner Olgaret Municipality, has made the arrangements for the marathon. With T. Sivkumar, this is Adarsh Kumar, Akashwani, Puducherry.
And in today's Defence News Capsule, we are presenting an interview of the GOCNC, Army Training Command, Lieutenant General S.S. Mahal, on the occasion of the 33rd Raising Day of the Command today. The interview has been taken by Broadcasting Officer Anand Saurabh of Directorate of Public Relations, Ministry of Defence.
सर प्रथम आपको आर्ट्रा के 33वें रेजिंग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बेहद स्वागत है हमारे इस विशेष प्रसारण में।
सबसे पहले इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आर्ट्रा इंडियन आर्मी का अपनी तरह का एक यूनिक कमांड है, कृपया हमारे श्रोताओं को इसके विभिन्न पहलुओं और प्रभाव के बारे में बताएं।
सबसे पहले तो आर्ट्रा का फुल फॉर्म आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, यानी कि इंडियन आर्मी की पूरी ट्रेनिंग की जिम्मेवारी इस कमांड की है। यही विशेषता आर्ट्रैक को बाकी 6 कमांड से यूनिक बनाता है। हमारा मिशन अगर मैं संक्षेप में कहूं तो हम भारतीय सेना के हर सैनिक को युद्ध के लिए विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग देने के लिए जिम्मेवार हैं। आर्ट्रैक की स्थापना 1 अक्टूबर 1991 को मऊ में 2 ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ हुई थी। आज जब आर्ट्रैक का 33वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, आर्ट्रैक की मौजूदगी 34 ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ पूरे देश भर में है। सेना की शक्ति उसकी सैनिकों की काबिलियत में छुपी होती है, जिसे एक अच्छी ट्रेनिंग के माध्यम से तराशा जाता है। इस ट्रेनिंग में मैं कहूंगा कि 8 विभिन्न फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन हैं। जवानों के लिए अग्निवीर ट्रेनिंग, ऑफिसर्स के लिए प्री कमीशन ट्रेनिंग, कॉम्बैट आर्म्स एंड कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स जैसे कि इन्फेंट्री, आर्मर्ड और आर्टिलरी की ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग जैसे कि इंजीनियर्स और ईएमई, लॉजिस्टिक ट्रेनिंग जैसे कि ऑर्डिनेंस और एएससी, स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग जैसे कि स्पेशल फोर्सेस और लीडरशिप ट्रेनिंग शामिल है। आर्ट्रैक रीसेटलमेंट ट्रेनिंग भी प्रदान करता है। आर्ट्रैक जवानों और ऑफिसर्स को फौजी सर्विस के शुरुआत से अंत तक और उसके बाद के लिए भी योग्य और सक्षम बनाता है। इस तरह हमारे ऑफिसर्स और जवान सेना सर्विस के दौरान और सेना निवृत्त होने के बाद भी राष्ट्र निर्माण में योगदान देते रहते हैं।
जनरल महल, आपको आर्मी ट्रेनिंग कमांड का नेतृत्व करते हुए लगभग 18 महीने हो गए हैं, आप अपनी इस यात्रा को किस प्रकार देखते हैं?
अगर सच कहूं तो आर्ट्रैक की कमांड मेरे लिए एक नई चुनौती थी। शुरू में मैंने आर्ट्रैक के लिए एक विजन निर्धारित किया था कि इंडियन आर्मी को ट्रेनिंग और एजुकेशन के माध्यम से ऐसे शेप करें जिससे रिस्पॉन्सिव, अडेप्टिव सोल्जर्स और लीडर्स ट्रेन हो, जो कि एक मॉडर्न युद्ध क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बने, और यही विजन हमारा मार्गदर्शन रहा है। अभी ऑफिसर्स देश की रक्षा करने के लिए 1 साल पहले यूनिट रिपोर्ट करेंगे। अग्निवीर को बेहतरीन ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग में कई बदलाव लाए हैं। नारी सशक्तिकरण की तरफ भी कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज और सैनिक स्कूल्स में गर्ल्स के लिए एडमिशन शुरू कर दिया है। सेना पुलिस में लड़कियों के लिए भर्ती खुल चुकी है। वुमेन ऑफिसर्स को डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, एमटेक, सीनियर कमांड जैसे महत्वपूर्ण कोर्सेज कराए जा रहे हैं, जो उन्हें कमांडिंग ऑफिसर्स की जिम्मेवारी उठाने के लिए सक्षम बनाएगी। युद्ध की नई तकनीक, नए साधन और नए हथियारों का सामना करने के लिए हम ट्रेनिंग में बदलाव लाए हैं।
जनरल महल, इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, हमारे श्रोताओं को आप अपनी चार दशकों की इस लंबी इलुस्ट्रियस सर्विस के एक्सपीरियंस से क्या संदेश देना चाहेंगे?
तकरीबन 40 साल के सर्विस के दौरान मुझे इंडियन आर्मी के सभी कमांड्स में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन 40 सालों के अनुभव ने मुझे डिसिप्लिन, अपने कर्तव्य और काम में माहिरता, इज्जत और सम्मान, निस्वार्थ सेवा और देश प्रेम जैसे कोर वैल्यूज सिखाई है। आज के युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि अगर इन्हीं कोर वैल्यूज को वो अपनाएं तो हमेशा सफल रहेंगे और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकेंगे।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच। जय हिंद।
परिक्रमा के लिए जनसंपर्क निदेशालय रक्षा मंत्रालय से मैं आनंद सौरभ।
एंड नाउ इट्स टाइम टू लिसन टू येट अनदर चैप्टर फ्रॉम इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड रिकॉल इवेंट्स दैट हैपेंड ऑन दिस डे।
एनी बेसेंट, अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एंड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एक्सपोनेंट्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, वॉज बॉर्न ऑन द 1st of October 1847 in London. She was involved in the free thought and radical movements led by Charles Bradlaugh, MP.
She advocated ideas which were ahead of the time, such as trade unions, national education, right for women to vote, and birth control. In 1889, Annie Besant joined the Theosophical Society, a religious movement based on Hindu ideas of karma and reincarnation. In 1893, she represented the Theosophical Society at the World Parliament of Religions in Chicago.
Nama nama Vasant Devi Jagat Vandite Prajvalite Jnana Jyoti Sakal Janahite.
She came to India in 1893 and fell in love with the land. She was associated with various causes including the emancipation of women, education, and most notably took part in the Indian freedom struggle. Once Mahatma Gandhi said about her that she awakened Indian people from their deep slumber.
Along with Lokmanya Tilak, she co-founded the Home Rule League in 1916, which aimed to campaign for democracy in India and dominion status within the empire.
In June 1917, when she was arrested by the British Empire, it was vehemently opposed by both Congress and the Muslim League. When Besant was freed in September 1917, she was welcomed by the crowds from all over India. Later, she was elected as the first woman president of the Indian National Congress in December 1917.
She established Banaras Hindu University in 1916 with the assistance of Maharaja of Darbhanga Rameshwar Singh, Maharaja of Banaras Prabhu Narayan Singh, Madan Mohan Malviya and Sundarlal.
In 1898, later, she also helped in establishing the Hyderabad Sindh National Collegiate Board, Mumbai, India in 1922.
Raghupati Venkataratnam Naidu was born on 1st of October 1862 in Machilipatnam in Andhra Pradesh. As his father, Raghupati Appaya Naidu worked as subedar in the army. He lived in Chandrapur. This helped him gain knowledge of Hindi, Urdu and Persian languages.
He graduated from Madras Christian College. He continued further education to complete MA and LT from the University of Madras. He founded the Social Purity Association in 1891 to train people as honest citizens.
He worked for the eradication of untouchability and uplift of scheduled castes and founded an orphanage and a hostel for them. He strived for the abolition of the Devadasi system in Andhra and succeeded to a considerable extent. He promoted widow remarriages and encouraged women's education.
He promoted Brahmo Samaj movement in Andhra. All the above social reforms have led to him being described as the second great social reformer of Andhra after Veera Salingam Panthulu. He breathed his last on the 26th of May 1939.
On this day, Hridayanath Kunzru was born in the year 1887. He was an Indian freedom fighter and public figure. He was also a seasoned parliamentarian, serving in various legislative bodies at the provincial and central level for nearly four decades.
He was a member of the Constituent Assembly of India from 1946 to 1950 that drew up the Constitution of India. He was also keenly interested in the international affairs and co-founded the Indian Council of World Affairs and the Indian School of International Studies. He breathed his last on the 3rd of April, 1978.
अब बात खेलों की, सीधा चलेंगे चीन के हांगचाओ में, जहां 19वें एशियाई खेल जारी हैं। आज 8वां दिन है। कल 7वें दिन तक भारत ने 38 पदक कुल जीते थे, और आज पदकों की संख्या और खेलों में क्या कुछ हुआ इसको लेकर हम स्टूडियो में पहुंच चुके हैं हमारे सहयोगी नवीन सक्सेना। नवीन, क्या कुछ रहा आज और कितने पदक जीते भारत ने?
हिमांशु, अभी अभी ये खबर आ रही है, भारत ने एक और कांस्य पदक हासिल कर लिया और ये पदक हमें मुक्केबाजी में मिला है। हालांकि निकहत जरीन को ये कांस्य पदक मिला है, सेमीफाइनल में वो हार गई है थाईलैंड के मुक्केबाज से। और अगर पदकों की बात करें तो भारत अब तक 11 स्वर्ण, 16 रजत और 16 कांस्य पदक जीत चुका है। कुल 43 पदक इस समय उसकी झोली में है और भारत चौथे स्थान पर है। इस समय एक महत्वपूर्ण मुकाबला चल रहा है, ऐतिहासिक मुकाबला कहेंगे इसे, बैडमिंटन में पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक के लिए भारत खेल रहा है। ताजा समाचार यह है कि लक्ष्य सेन पहला सेट जीत चुके हैं और भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी है। और दूसरे मुकाबले में इस समय सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी की जोड़ी का मुकाबला चल रहा है और वो बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रमुद, अगर बात करें महिला हॉकी की, तो पूल चरण में आज भारत और दक्षिण कोरिया का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा और इसके साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मंगलवार को भारत अब अपने अंतिम ग्रुप स्टेज मैच में हांगकांग के साथ खेलेगा। निशानेबाजी में आज पुरुषों की व्यक्तिगत ट्रैप स्पर्धा में कीनन डारियस ने भी कांस्य पदक जीता और आज ही भारत ने निशानेबाजी की पुरुष टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप स्पीड टीम की जो स्पर्धा थी उसमें रजत पदक भारत को मिला। इससे पहले आज सुबह गोल्फ में अदिति अशोक ने रजत पदक के साथ भारतीय पदकों का खाता खोला। मुक्केबाजी में बात करें तो परवीन ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए पदक पक्का कर लिया है और इसके साथ ही परवीन ने पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। तीरंदाजी के कंपाउंड स्पर्धा की व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन में ज्योति सुरेखा वेनम ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में ज्योति याराजी ने फाइनल में जगह बना ली है और वहीं आमलान बोरगोहेन ने पुरुषों के 200 मीटर दौड़ के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हालांकि इस समय तेजेंद्र सिंह तूर और साहेब सिंह पुरुष गोला फेंक के फाइनल में अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। वहीं जैस्विन एल्ड्रिन और श्रीशंकर मुरली पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में भाग ले रहे हैं। अगर बात करें तो अविनाश साबले की बात करते हैं, पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेस फाइनल में वो हिस्सा लेंगे। सीमा पुनिया महिला चक्का फेंक के फाइनल में होंगी। हरमिलन बैंस और दीक्षा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल और जिनसन जॉनसन और अजय सरोज पुरुषों की 1500 मीटर के फाइनल में आज अपना भाग्य आजमाएंगे। तो अब वापस चलता हूं मैं हिमांशु और प्रबोध के पास, तो ये अब तक की लेटेस्ट जानकारी
थी। धन्यवाद नवीन इस ताजा अपडेट के लिए। और
नवीन के आवाज में भी एक खनक थी, विच इज शोइंग दैट यू आल्सो हैप्पी अबाउट इंडिया डूइंग वेल एट द एशियन गेम्स।
बिल्कुल, जब भारत पदक जीत रहा है तो आवाज में खनक होना लाजमी है।
थैंक यू सो मच नवीन फॉर दैट अपडेट।
थैंक यू।
और बात सैफ अंडर 19 की, प्रमोद से।
जी, इन फुटबॉल इंडिया हैव वन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप आफ्टर डिफीटिंग पाकिस्तान 3-0 इन अ डोमिनेटिंग डिस्प्ले इन द फाइनल्स एट द दशरथ रंगशाला स्टेडियम इन काठमांडू यस्टरडे। मांगलांग थंग चिप जेन एंड क्विमशागार गोयारी स्कोर्ड फॉर इंडिया।
और अब बात उन महान लोगों की जिनकी आज जयंती है, पुण्यतिथि है या है जन्मदिन, तो शुरुआत कहां से करेंगे?
जी हिमांशु, मैं शुरुआत करूंगा गुल मोहम्मद से
जी।
अब आप पूछें कि गुल मोहम्मद कौन है, वो न्यू दिल्ली इंडिया से है एंड ही वॉज द शॉर्टेस्ट एडल्ट ह्यूमन बींग ऑफ दिस टाइम हुज एग्जिस्टेंस एंड हाइट हैव बीन इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड। उनका हाइट था सिर्फ और सिर्फ 21 इंच
जी।
And khas baat ye hai Himanshu that he has been listed in the Guinness Book of World Records as the shortest man ever.
जी बिल्कुल, और एक बड़ी उपलब्धि, दिल्ली के ही थे गुल मोहम्मद
जी।
और अब बात करते हैं जिनकी आज जयंती है, हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध गीतकार मजरू सुल्तानपुरी की आज जयंती है।
अमेजिंग,
उन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए देश, समाज और साहित्य को नई दिशा देने का काम किया है। उनकी एक मशहूर पंक्तियों में से एक है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग पास आते गए और कारवा बनता गया। उनका असली नाम असरार उल हसन खान था, लेकिन क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर में उनका जन्म हुआ था, इसलिए वो मजरू सुल्तानपुरी के नाम से उनको जाने जाते हैं। और शाहजहां फिल्म में उन्होंने गीत लिखना शुरू किया था और सहकुंदनलाल सहगल ने गाना गाया था जब दिल ही टूट गया, वो आज भी लोकप्रिय है,
बहुत ही फेमस गाना है
जी बिल्कुल। कई फिल्में सीआईडी, चलती का नाम, गाड़ी, 9-2-11, तीसरी मंजिल, पेइंग गेस्ट, काला पानी, तुमसे नहीं देखा, दिल देखे देखो, दिल्ली का ठग, जैसी कई फिल्मों में गाने उन्होंने लिखे और वो आज भी लोकप्रिय हैं। 1994 में उन्हें फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए सुनते हैं उनका लिखा एक गीत जो फिल्म है कयामत से कयामत तक।
एक्सलेंट।
अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा,
तेरे तो है हम सब से सनम, अकेले हैं तो क्या हम है।
Himanshu, today is also the birthday of Villupuram Chinnaya Manrayar Ganesha Murthy.
Pramod, पहली बार शायद मैं सुन रहा हूँ।
नहीं नहीं,
क्लियर कीजिए थोड़ा सा।
जी जी, शिवाजी गणेशन।
ओह या, शिवाजी गणेशन, द ग्रेट तमिल एक्टर।
ही वॉज एन आईकॉन एंड ही इज रिसीव दादा साहब फाल्के अवार्ड एंड ही वॉज एक्टिव इन तमिल सिनेमा फॉर नियरली 5 decades, 50 years उन्होंने तमिल सिनेमा को अपना हुनर दिखाने से यू नो बाज नहीं आए वो। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू विन अ बेस्ट अवार्ड इन एन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड ही ऑल्सो वन द एफ्रो एशियन फिल्म फेस्टिवल हेल्ड इन कायरो। एंड ऑफकोर्स उनके लिए आई कैन टॉक गो ऑन एंड ऑन अबाउट हिम, बट वी नो हिम फॉर वन ऑफ हिज फेमस रोल which he did from a film called Tevar Magan. Uska ek gana sun lete
hain. Ji bilkul.
Je ed palahi manja chav palahi kall chiri palahi marak man kood dillaye marak mama mayanna mayakude
Himanshu, he is also remembered as an iconic figure of Tamil cinema. Upon his death, the Los Angeles Times described him as the Marlon Brando of South Indian film industry. Marlon Brando ko kaha jata, he was the most natural actor and the most amazing actor. And Shivaji Ganeshan ko unke sath compare kiya gaya, which I think is very amazing.
Ji bilkul, aur aaj hi jayanti hai suprasiddh geet sangeetkar aur gayak Sachin Dev Barman ki. Aur Sachin Dev Barman yani ki SD Barman, aisa naam jise bhartiya sangeetkar ke roop mein hindi film udyog par amit प्रभाव छोड़ा था। त्रिपुरा में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने हिंदी फिल्मों में कई दिल छूने वाले गाने उन्होंने दिए हैं और उनका एक गाना जो उन्होंने गाया भी है फिल्म आराधना से, आइए सुनते हैं उस गीत को
जी।
काहे को रोए चाहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए।
एसजी बर्मन की जोड़ी गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के साथ भी खूब जमी। एसजी बर्मन और मजरू सुल्तानपुरी की जोड़ी वाले गीतों में कुछ गीत इस प्रकार हैं, माना जनाब ने पुकारा नहीं, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, और है अपना दिल तो
आवारा।
अपना दिल तो आवारा, अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा।
श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए हिमांशु कांडपाल और वीसी प्रमोद को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
दी दैट्स राइट, एंड हिमांशु एज ऑलवेज अ प्लेजर डूइंग द शो विथ यू।
दैट्स डेफिनेटली, हमेशा। थैंक यू,
नमस्कार।
नमस्कार।